नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और जर्मनी ने 19 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा और व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच की स्थापना शामिल है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि जर्मनी के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा और भारतीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भर्ती के लिए एक नए तंत्र की घोषणा आवागमन के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। जर्मनी ने हरित और सतत विकास साझेदारी के तहत 1 अरब 24 करोड़ यूरो के वित्त पोषण की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। वे गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 2000 से अधिक जर्मनी की कंपनियां लंबे समय से कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को विस्तृत कर रहे हैं।
रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने रक्षा व्यापार से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जर्मनी के चांसलर का आभार व्यक्त किया। श्री फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इससे पहले श्री मोदी तथा जर्मन चांसलर ने अहमदाबाद में ऐतिहासिक साबरमती आश्रम का दौरा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय बजट 2026-27 पहली फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में बताया कि सदन में बजट पेश करने की प्रक्रिया पहली फरवरी को सवेरे 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि संसद सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर 2026 के बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह प्रक्षेपित किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 और 14 अन्य वाणिज्यिक उपग्रह ले जा रहे PSLV-C62 रॉकेट मिशन के 64वें प्रक्षेपण में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि तीसरे चरण के अंत तक यान का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप ही था। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। यह दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस संवाद के लिए निबंध संग्रह भी जारी करेंगे। किसान और कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वे नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि नेतृत्व के लिए युवाओं में आत्मविश्वास, समर्पण और एकाग्रता आवश्यक गुण हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है। अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार इन प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या 544 हो गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। महिला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।